एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिनका जीवन आप कह सकती हैं मानवीय इच्छा शक्ति का, उसकी अदम्य भावना का एक प्रतीक है।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं हेलेन केलर की और उनकी जो बहुत ही प्रेरणा देने वाली आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। ये बस एक किताब नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे घोर अंधेरे और खामोशी के बीच भी ज्ञान की एक रोशनी और संवाद की जो ताकत है वो कैसे जिंदगी बदल सकती है।
बिल्कुल सही कहा। हेलेन केलर जो 1880 से 1968 तक रहीं, वो एक अमेरिकी लेखिका थीं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थीं और लेक्चरर भी। उनकी कहानी इतनी खास इसलिए है और आज भी इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि सोचिए सिर्फ 19 महीने की उम्र में,
महज 19 महीने,
माँ एक गंभीर बीमारी हुई, शायद स्कारलेट फीवर था या मेनिनजाइटिस, ठीक से पता नहीं, पर उसकी वजह से उनकी देखने और सुनने की दोनों क्षमताएं चली गईं।
अरे बाप रे,
मतलब दुनिया से जुड़ने के जो दो सबसे मुख्य रास्ते होते हैं वो बंद हो गए।
सोचकर भी डर लगता है ना, एक ऐसी दुनिया जो एकदम शांत हो, एकदम अंधेरी। पर कमाल देखिए, यही हेलेन केलर आगे चलकर रैडक्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाली पहली बधिर दृष्टिहीन व्यक्ति बनी।
जी,
ये सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं थी, इसने समाज की सोच को, विकलांगता को लेकर जो धारणाएं थी उनको सीधी चुनौती दी।
सही बात है, उनकी आत्मकथा हमें मजबूर करती है सोचने पर कि इंसान की क्षमता की सीमाएं क्या हैं, सीखने की प्रक्रिया कैसे काम करती है और दुनिया को असल में समझने के दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं। वो एक सवाल पूछती हमसे कि जब आपकी इंद्रियों के दरवाजे बंद हों तो इंसान होने का क्या मतलब है, दुनिया से आप कैसे जुड़ते हैं और इसमें भाषा का, कम्युनिकेशन का क्या रोल है।
हाँ, तो चलिए इसी यात्रा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। किताब के जो शुरुआती अध्याय हैं, पहले 3 अध्याय, वो हमें उनके बचपन की धुंधली यादों में ले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे वो बस छूकर या सूंघकर महसूस कर रही थी। पढ़ते हुए भी एक अजीब सी बेचैनी होती है, वो अलगाव महसूस होता है।
हाँ, वो बताती हैं उस बीमारी के बारे में जिसने उन्हें सिर्फ 19 महीने की उम्र में इस अंधेरे और सन्नाटे की दुनिया में डाल दिया था। वो खुद को उस वक्त एक प्रेत जैसा, फैंटम कहती हैं वो, एक ऐसी बच्ची जो बिना किसी नियंत्रण के लगभग जंगली सी थी। एक ऐसी दुनिया में जी रही थी जिसका कोई नाम नहीं था, कोई संदर्भ नहीं था, भाषा नहीं थी ना, तो दुनिया का कोई मतलब ही नहीं था, बस संवेदनाएं थी, एक उलझा हुआ सा बहाव।
और वो जो संवाद न कर पाने की छटपटाहट थी, वो गहरी हताशा, वो अक्सर गुस्से में या चीजें फेंकने, हिंसक व्यवहार में निकलती थी।
बिल्कुल,
उनके माता पिता आर्थर और केट केलर, उनकी शुरू की निराशा और फिर कैसे उन्होंने मदद के लिए हर दरवाजा खटखटाया, वो भी बहुत अहम है।
हाँ, ये बात बिल्कुल साफ दिखती है कि असली बाधा शायद शारीरिक कम, भाषा ही ज्यादा थी। दुनिया को समझने और खुद को व्यक्त करने का कोई जरिया ही नहीं था उनके पास।
सही,
और यहीं से अध्याय 4 से 6 में कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। 3 मार्च 1887,
वो तारीख,
हाँ ये तारीख हेलेन केलर की जिंदगी में एक नई युग की शुरुआत थी। उनकी टीचर एनी सुलिवन उनके घर आई, पर शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। हेलेन शक से भरी थी, डरी हुई थी और विरोध कर रही थी।
हाँ, वो समझ आता है।
और फिर आता है वो सीन जो शायद दुनिया भर में मशहूर है, कुएं के पास वाला।
हाँ बिल्कुल,
द वेल हाउस सीन।
एनी ने हेलेन का एक हाथ पानी की ठंडी धार के नीचे रखा और उसी वक्त उनके दूसरे हाथ की हथेली पर उंगलियों से लिखा WATER,
पानी।
पानी,
एक बहुत ही साधारण सा शब्द पर उसका असर किसी जादू से कम नहीं था, है ना, जादू ही था वो। हेलेन के लिए वो सिर्फ एक शब्द सीखना नहीं था, वो लिखती हैं, उस जिंदा शब्द ने मेरी आत्मा को जगा दिया, उसे रोशनी दी, उम्मीद दी, खुशी दी, उसे आजाद कर दिया।
वाह,
ये भाषा की शक्ति का पहला एहसास था। उन्हें पहली बार ये समझ आया कि हर चीज का, हर एहसास का एक नाम होता है और इन नामों से ही दुनिया को समझा जा सकता है, उसे एक तरतीब दी जा सकती है। ये उनकी बौद्धिक और भावनात्मक जागृति थी जिसे वो कहती हैं आत्मा का जन्म।
और इस एक अनुभव ने जैसे अंदर ज्ञान की एक ऐसी प्यास जगा दी जो कभी बुझी नहीं, वो हर चीज का नाम जानना चाहती थी।
बिल्कुल,
और एनी सुलिवन की जो पढ़ाने की पद्धति थी वो भी कमाल की थी, पारंपरिक तो बिल्कुल नहीं थी।
नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो प्रकृति को ही क्लासरूम बना लिया। हेलेन ने पौधों को छूकर महसूस किया कि वो कैसे बढ़ते हैं, जीवाश्मों की बनावट को समझा, यहाँ तक कि फर्श पर जो वाइब्रेशंस होती थीं, उनसे संगीत को महसूस किया।
सुना नहीं, महसूस किया, कमाल है।
हाँ, फिर उन्होंने ब्रेल सीखी, वो लिपि जिसमें उभरे हुए डॉट्स होते हैं, और उससे तो जैसे उनके लिए साहित्य का, किताबों का एक पूरा समंदर खुल गया। किताबें उनकी साथी बन गईं,
उनकी खिड़कियां बन गईं जिनसे वो दुनिया को देख सकती थीं, समझ सकती थीं।
और फिर वो पर्किंस इंस्टीट्यूशन गईं, जहां वो पहली बार अपने जैसे बच्चों से मिली। उसे अकेलापन कुछ कम हुआ होगा।
हाँ, काफी फर्क पड़ा उससे। और सारा फुलर की मदद से उन्होंने बोलना सीखने की भी कोशिश शुरू की, जो कि मतलब बेहद मुश्किल काम था।
सोचिए, बिना आवाज सुने कोई बोलना कैसे सीख सकता है?
ये तो अकल्पनीय है। लेकिन रास्ता सिर्फ कामयाबियों का ही नहीं था, है ना? वो फ्रॉस्किंग वाली घटना भी तो हुई थी।
हाँ, वो एक मुश्किल दौर था। उन्होंने एक कहानी लिखी, पर बाद में पता चला कि वो अनजाने में किसी सुनी हुई कहानी की नकल थी। उन पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा।
ओहो।
इस बात से उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा। उन्हें अपनी याददाश्त पर, अपनी मौलिकता पर शक होने लगा। ये दिखाता है कि सीखने की राह कितनी जटिल हो सकती है। उसमें नैतिक और भावनात्मक चुनौतियां भी आती हैं।
सही कहा, और ये चुनौतियां आगे भी रही हैं ना, खासकर जब औपचारिक शिक्षा की बात आई।
बिल्कुल। किताब के जो बाट के अध्याय हैं, मतलब 14 से 23 तक, वो उनकी औपचारिक शिक्षा पर फोकस करते हैं। रैडक्लिफ कॉलेज में एडमिशन की तैयारी और फिर वहां के अनुभव। कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज में तैयारी करना ही अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम था।
जरा सोचिए तो उस स्थिति को, सारी टेक्स्ट बुक्स ब्रेल में पढ़नी है या कोई लगातार आपके हाथ पर स्पेल करके बता रहा है। फिर टाइपराइटर पर जवाब लिखने हैं और ऐसे एग्जामिनर्स के सामने परीक्षा देनी है जिन्हें आपकी इस खास, क्या कहते हैं, पढ़ने लिखने की पद्धति का कोई अंदाजा ही नहीं है।
सही में।
उन परीक्षाओं को पास करना सिर्फ एकेडमिक सफलता नहीं थी, वो तो उनकी इच्छा शक्ति, उनकी बुद्धि और हाँ, एनी सुलिवन के बिना थके समर्थन का सबूत था।
बिल्कुल, रैडक्लिफ में पढ़ना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। पर मुश्किलें वहां भी कम नहीं थी।
अच्छा।
जैसे? अरे, पढ़ने के लिए इतना सारा मटेरियल होता था, लेक्चर्स बहुत तेजी से होते थे, जिन्हें एनी को लगभग रियल टाइम में हेलेन के हाथ पर स्पेल करना पड़ता था। सोचिए, इतना थका देने वाला काम होगा दोनों के लिए।
हाँ, ये तो है।
और कई बार उन्हें एक तरह का बौद्धिक अकेलापन भी महसूस होता था। क्लासमेट्स के साथ वो सहज बातचीत तो नहीं कर सकती थी ना। बाहरी दुनिया से उनका जुड़ाव मुख्य रूप से एनी की उंगलियों के जरिए ही था।
ये किताब उनके ग्रेजुएशन से ठीक पहले खत्म हो जाती है, जहां तक मुझे याद है।
हाँ, बिल्कुल।
लेकिन इसका जो अंत है वो निराशा का नहीं, बल्कि आभार का है। भविष्य के लिए एक उम्मीद है उसमें।
सही। और उनकी विरासत सिर्फ उनकी डिग्री या किताबों तक सीमित नहीं है। उनकी विरासत है विकलांगता के बारे में समाज की सोच को बदलना, शिक्षा की जो परिवर्तनकारी शक्ति है उसे उजागर करना, और मानवीय रिश्तों की गहराई को दिखाना।
हाँ, तो अगर हम उनके मूल दर्शन को, उनके जीवन मूल्यों को समझने की कोशिश करें तो क्या चीजें सामने आती हैं?
मेरे ख्याल से एक बात तो बिल्कुल साफ है, उनके लिए भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं थी, वो चेतना को जगाने वाली, उसे आकार देने वाली चाबी थी।
मतलब भाषा के बिना विचार अधूरे हैं।
हाँ, एक तरह से भाषा के बिना विचार अस्पष्ट रहते हैं, बिखरे हुए। भाषा उन्हें एक ढांचा देती है, एक स्पष्टता देती है।
और उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि इंसान के सीखने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है, अगर सही तरीका मिल जाए और इरादा पक्का हो।
बिल्कुल।
शारीरिक सीमाएं दिमाग के विकास को रोक नहीं सकती। जैसा उन्होंने कहा भी है, ज्ञान ही प्रेम है, प्रकाश है और दृष्टि है।
वाह, क्या बात है।
उनके लिए तो ज्ञान ही दुनिया देखने का तरीका बन गया। ये कमाल की बात है ना कि मन कैसे बाहरी सीमाओं को लांग सकता है।
अद्भुत है। और इसमें एनी सुलिवन का जो रोल है वो तो अविश्वसनीय है। उनका रिश्ता एक मिसाल है कि एक समर्पित टीचर, एक मेंटर कैसे किसी की जिंदगी बदल सकता है।
सही।
ये दिखाता है कि शिक्षा कितनी व्यक्तिगत होनी चाहिए, कितनी रचनात्मक, छात्र की जरूरत के हिसाब से ढलने वाली। रटे रटाए तरीके हेलेन के लिए बेकार थे, एनी को लगातार नए रास्ते खोजने पड़े।
और मानवीय रिश्ते, सहानुभूति, ये भी बहुत केंद्रीय लगते हैं उनके विचारों में। कोई भी बड़ी उपलब्धि अकेले हासिल नहीं होती, है ना?
बिल्कुल नहीं। परिवार, शिक्षक, दोस्त, इन सब का साथ बहुत कीमती होता है। उनकी वो मशहूर कहावत है ना?
हाँ हाँ, वो वाली कि अंधेरे में किसी दोस्त के साथ चलना रोशनी में अकेले चलने से कहीं बेहतर है।
बिल्कुल। ये उनके अपने अनुभवों का निचोड़ है।
और फिर जाहिर है लचीलापन, रेजिलियंस और दृढ़ संकल्प।
हाँ, वही तो उनकी यात्रा का सार है। बार बार गिरना पर फिर उठ खड़ा होना, सीमाओं को मानने से इनकार कर देना और लगातार आगे बढ़ते जाना।
ये सिर्फ विकलांगता पर जीत की कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी तरह की मुश्किल पर, किसी भी विपरीत परिस्थिति पर मानवीय भावना की जीत की कहानी है।
उन्होंने सामान्य और भिन्न की जो हमारी बनी बनाई परिभाषाएं हैं, उनको भी तो चुनौती दी।
हम
उनकी कहानी सिखाती है कि दुनिया को अनुभव करने के, उसे समझने के कई तरीके हो सकते हैं, और हर तरीका अपने आप में उतना ही सही, उतना ही कीमती है।
और कल्पना, जब बाहर की आंखें बंद थी तो कल्पना उनकी अंदर की आंख बन गई, खासकर साहित्य के जरिए, जिसने उन्हें अनगिनत दुनियाओं की सैर कराई।
ये भी एक बहुत गहरा सबक है।
हाँ।
अच्छा, अगर हम हेलन केलर के जीवन के उन मोड़ों की बात करें जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, ऐसे तीन सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ कौन से होंगे? वो पल जिन्होंने न सिर्फ उनकी जिंदगी की दिशा बदली बल्कि शायद दूसरों पर भी असर डाला।
ये चुनना मुश्किल है, पर कोशिश करते हैं। पहला और सबसे बुनियादी मोड़ तो मेरे ख्याल से वो बीमारी ही थी, 19 महीने की उम्र में।
हाँ, वो तो है ही।
उसी ने तो वो स्थिति पैदा की जिसने उनके पूरे जीवन के संघर्ष और फिर जीत की कहानी की नींव रखी। वो शुरुआती बिंदु था जिसने बाकी सब कुछ या तो जरूरी बना दिया या संभव।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा जो शायद सबसे ज्यादा याद किया जाता है और जिसका असर सबसे गहरा था, वो था एनी सुलिवन का आना और फिर कुएं पर वो पानी वाला क्षण।
हाँ, WATR।
हाँ, वो सिर्फ एक शब्द सीखना नहीं था, वो भाषा के जादू से पहला सामना था, चेतना का दरवाजा खुलने जैसा था। जैसा हेलन ने खुद कहा, वो उनकी आत्मा का जन्म था। उस एक पल ने उन्हें खामोशी और अंधेरी की कैद से निकालकर विचारों और संवाद की दुनिया में ला खड़ा किया। ये एक क्रांति थी उनके लिए।
और तीसरा?
तीसरे महत्वपूर्ण मूड में कहूंगा उनका रैडक्लिफ कॉलेज जाने का पक्का इरादा और उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना।
अच्छा, ये क्यों इतना अहम था?
देखिए, ये सिर्फ उनकी अपनी जबरदस्त दिमागी काबिलियत और इच्छा शक्ति का सबूत नहीं था, इसने उस समय की शिक्षा व्यवस्था के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। इसने ये साबित किया कि गंभीर शारीरिक चुनौतियों वाले लोग भी, अगर उन्हें सही मदद मिले और उनके हिसाब से अनुकूलन किया जाए, तो वो उच्च शिक्षा के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं। इसने अनगिनत दूसरे लोगों के लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए।
हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से।
बिल्कुल।
तो ये जो असाधारण जीवन यात्रा रही है, ये हमें सिखाती क्या है? मतलब आज हम इससे क्या सबक ले सकते हैं अपनी जिंदगी के लिए? शायद सबसे पहला तो वही रेजिलियंस, लचीलापन।
हाँ, मुश्किलों का सामना करने और उनसे उभरने की क्षमता, ये तो है ही।
और ये भी कि सीमाएं शायद हमारे दिमाग में ज्यादा होती हैं, हमारी असल काबिलियत में कम।
बिल्कुल सही। अगर हम इस पर ध्यान दें कि क्या किया जा सकता है बजाय इसके कि क्या नहीं किया जा सकता, तो संभावनाओं का एक नया आसमान खुल जाता है।
हाँ।
यही हेलन की जिंदगी दिखाती है। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया।
और ये कहानी एक समर्पित टीचर, एक गाइड के असर को भी कितना उजागर करती है। एनी सुलिवन ने सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्होंने हेलन की क्षमता पर भरोसा किया, उनके लिए दुनिया के दरवाजे खोलने के लिए जी जान लगा दिया।
सच में एक अच्छा टीचर या मेंटर जिंदगी बदल सकता है।
हाँ,
और साथ ही ये सहानुभूति और कम्युनिकेशन के महत्व पर भी जोर देती है। दूसरों के अनुभवों को समझने की कोशिश करना, उनकी जरूरतों के लिए संवेदनशील होना और बात करने के जुड़ने के नए तरीके खोजना, ये कितना जरूरी है। हेलन की कहानी दिखाती है कि संवाद की बाधाएं भी रचनात्मकता को जन्म दे सकती हैं, अगर हम सच में जुड़ने की कोशिश करें।
और एक और बात जो मुझे हमेशा बहुत छूती है, वो है साहित्य और कल्पना की ताकत।
हाँ।
जब बाहरी दुनिया उनके लिए सीमित थी, तब किताबें और कल्पना उनकी पनाहगाह बनी, उनकी आज़ादी का जरिया बनी। उन्होंने शब्दों के जरिए दुनिया को देखा, उसे जिया। ये दिखाता है कि हमारा अंदरूनी जीवन कितना अमीर हो सकता है, बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों।
बिल्कुल। तो अंत में अगर हम हेलन केलर की द स्टोरी ऑफ माई लाइफ से तीन खास बातें निकालें जिन्हें सुनने वाले अपने साथ ले जा सकें, तो वो क्या होंगी?
तीन मुख्य निष्कर्ष।
हाँ।
पहली, शायद एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि, वो जो गहरे अकेलेपन के बाद किसी से जुड़ने, समझे जाने की जो अपार राहत और खुशी मिलती है। वो एहसास कि कोई आपको समझता है, आपकी बात सुन रहा है, ये दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से है। जैसा हेलन ने महसूस किया, दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीजें देखी या छुई नहीं जा सकती, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। ये जो कम्युनिकेशन का भावनात्मक पहलू है, ये अनमोल है।
वाह, ये बहुत खूबसूरत है। और दूसरी?
एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि।
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि ये है कि भाषा सिर्फ बात करने का टूल नहीं है, यह हमारी चेतना की, हमारी सोच की बुनियाद है, उसका ढांचा है। भाषा के बिना दुनिया बेमानी है, उलझी हुई है। हेलन का अनुभव दिखाता है कि इंसान की क्षमता हमारी सोच से कहीं ज्यादा है, और अगर शिक्षा को व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से ढाला जाए तो ये छिपी हुई क्षमता बाहर आ सकती है। उनका वो कथन, ज्ञान ही प्रेम, प्रकाश और दृष्टि है, इसी बौद्धिक जागरण का सार है।
ज्ञान ही दृष्टि है, और तीसरी एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि जो हम सब पे लागू हो।
और तीसरी एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि ये है कि दृढ़ता, अटूट इरादे और सही सहारे से नामुमकिन लगने वाली बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। सीमाएं हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि उन पर हमारी प्रतिक्रिया हमें परिभाषित करती हैं। और सबसे अहम बात, एक समर्पित इंसान, चाहे वो टीचर हो, गाइड हो, दोस्त हो, उसका असर जिंदगी बदल सकता है। एनी सुलिवन ने हेलन की जिंदगी बदली, और फिर हेलन ने दुनिया की सोच बदली। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब में कहीं ना कहीं दूसरों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत है। शायद यही सबसे बड़ा सबक है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।